सफा नंबर 224। इस वक्त मसला ये था कि यूनानियत का दाग धोया जाए, अब हमें फरंगियत का दाग धोना है। मैंने कहा, हम लोग तो खुद ही गिरफ्तार फिरंग हैं, यूं भी फरंग से बेतल्लक रहना कैसे मुमकिन है? आपने भी तो मगरबी फलसफे का मुताला किया है। लोग कहते हैं कि आप ऐसा ना करते तो वो अफकार और तसवरात जिनको आपने अपनी शायरी और खुतबात में शाम पेश किया है कहाँ से आते? अर्शाद व लोग जाहिल हैं, वो बात नहीं समझते, इन्हें अपने माजी की मतलब खबर नहीं, वो क्या जाने अफकार हाजरा की हकीकी कदरों कीमत क्या है। ये फलसफा व हिकमत तो खैर बड़ी चीज़ है, सियासत ही को देख लो, मुसलमानों के दिलों में मगर भी तसव्वुरात का सिक्का जम रहा है। और तो और ये मौलवी हुसैन अहमद भी कह रहे हैं कि कौमें वतन से बनती हैं और इस्लामी अफकार का हिस्सा इनमें क्या है। मुलाहजा व तशकील खुतबा अव्वल फिर कुछ आपदीदा होकर और कुछ मुतसफाना लहजे में फरमाया, हक के राह बा फरीदे बद के नबी राह बा फरीदे बद आह शेर के खुद राह मदनी ख्वान। अर्शाद हुआ ये शेर यूं ही हो गया है, काबरे अतना नहीं। फिर फरमाया, जरा ख्याल तो करो, एक तरफ दियो बंद है और दर्श हदीस दूसरी जानब, ये अर्शाद के अकवाम औतान से बनती हैं। दोपहर हो गई, अली बख्श ने खाने का पूछा, अर्शाद हुआ ले आओ। हजरत रामा चाहते थे मैं बात किए जाऊँ, उन्होंने करवट बदली, हुक्के का कश लगाया और मुसलमानों के जहनी इन हताहत पर तबसरा करने लगे। फरमाया, जहनी अजमलाल पैदा हो तो तहजीब जदीद के मुकाबले की ताब भी ना रही। सफा नंबर 225। अर्शाद हुआ, हिंद हो या बैरून हिंद, हर कहीं एक सी कैफियत है, जिंदगी के आसार कहीं नजर नहीं आते। मतलब ये था कि आलम इस्लाम में किसी ऐसी तहरीक के आसार नजर नहीं आते जिससे इसके जवाल व इन हताहत का सद्देबाब हो सके। मैंने अर्ज़ किया, शाह फरूक की शादी हुई मगर ये सारी तकरीब मगरबी रस्म और रवाज के मुताबिक अदा की गई। शेख उल अजहर की हमीयत दीनी के अफसाने यूं तो बहुत सुनने में आए लेकिन वो भी इस तकरीब में शरीक थे और एक लफ्ज़ तक इसके खिलाफ नहीं कहा। तस्वीरें देखिए तो मालूम होता है किसी फरंगी शहजादे की रस्में खुद खुदाई अदा हो रही है। शेख मुस्तफ़ा अलमराकी, अर्शाद हुआ, जब कोई कौम गिर जाती है तो इसका यही हाल होता है। मैंने जवेद नामा में लिखा है, मुसलमान अपनी कुव्वत तख्लीक खोकर दूसरों की तलकीन पर उतर आए हैं। ताज़ा अश जज कहना अफरंगे नीस्त, ये तो कुव्वत तख्लीक ही कौमों के आइन को जिंदगी और तहजीब व मुआशरत की जान है, ज़रूरत है कुव्वत तख्लीक की। इतने में अली बख्श खाना ले आया और मैंने इजाज़त तलब की। सफ़ा नंबर 226। चार शिम्बा 9 फरवरी। सपहर हो रही थी कि मैं हाजिर हुआ। हजरत लामा को अफसोस है कि शहीदगण के सिलसिला में मुसलमानों को बराबर धोखा दिया जा रहा है, हालांकि खुद ज़रूरत अकदाम की है, कोई ऐसा अकदाम जिससे मुसलमानों की जमीयत मजबूत होती। फरमाया, हमारी हालत तो जो है सो है, लेकिन इस अंग्रेजी हुकूमत को देखिए जिससे डेमोक्रेसी और राय आमा के एहतराम का दावा है। अगर डेमोक्रेसी की यही शान है जिसका सबूत हुकूमत दे रही है तो ऐसी डेमोक्रेसी किसी शरीफ कौम में परवरिश नहीं पा सकती। अर्शाद हुआ, मगरब का निज़ाम मदनीयत रूबा इन्हिताथ है, हिटलर भी को देख लो, इसकी अमरीत से कलीसा भी महफूज नहीं रहा। आलम इस्लाम में भी बड़े बड़े मुस्तबद और जब्बारों का हार गुजरे हैं लेकिन इस किस्म की मतलब के अनानी की मिसाल तो इनके यहाँ भी नहीं मिलती, इन्हें भी इतने अख्तियार हासिल नहीं थे। हिटलर बसर इकतदार आया तो बड़ा ट्रस्ट तहरीक के जेर नतीजा, अगरचा हर प्रोटेस्ट मुल्क में मुल्की कलीसा कायम हो चुका था मगर था रियासत से आज़ाद। गो ये दो निज़ाम एक दूसरे में मुदाखलत किए बगैर पहलू ब पहलू चल रहे थे, लेकिन हिटलर ने फैसला किया कि हिंदू जर्मन कलीसा भी जर्मन रियासत के मुतहद रहेगा, रियासत से आज़ादाना इसकी कोई हैसियत नहीं। हजरत इलामा रुक रुक कर बातें कर रहे थे, मैं हतुलबसा कोई सवाल ना करता, मतलब ये था कि इन्हें आराम मिले। उन्होंने एक दो बार बच्चों का पूछा, दो एक बार अली बख्श आया, चिलम बदली, दुआ खिलाई और पांव दाबने लगा। हजरत इलामा ने करवट ली, शायद थोड़ी देर के लिए सो गए। सफा नंबर 227। चौधरी साहब आ गए, फिर राजा साहब, शाम हो चुकी थी, फर्शी साहब का इंतजार था, वो आए तो हजरत इलामा ने तबीयत का हाल बयान किया, फिर शहीद गंज अपील और यूनिटस्ट पार्टी की बातें चल निकली। हजरत इलामा सुनते और महफूज होते रहे। सफ़ा नंबर 228। जुमेरात 10 फरवरी। अभी दोपहर नहीं हुई थी कि हाजिर खिदमत हो गया, खरीयत मिजाज पूछी तो बातों में मालूम हुआ बसों मौलवी मोहम्मद अली मिलने आए थे, देर तक बैठे रहे और अपनी मोहब्बत और मौद्दत का यकीन दिलाते रहे। ये भी पता चला कि दौलताना भी आए थे बज़ाहिर इयादत के लिए, मगर असल मदा कुछ और था। कहने लगे, सुना है लीग का इज्तिमा लाहौर में हो रहा है, ऐसा हुआ तो शोरश का एहतमाल है, आप जनाब को इतला कर दीजिए। मरहूम अमीर जमात अहमदिया लाहौर, मरहूम नवाब अहमद यार खान, ये गोया यूनिस्ट पार्टी की तरफ से ऐलान जंग था। ख्याल था कैद आदम इस धमकी से मरहूम हो जाएंगे, हजरत इलामा भी इसे खातर में नहीं लाए, बल्कि इनका ये इसरार बढ़ रहा था कि लीग का इजलास लाहौर ही में होना चाहिए। गो इनकी ज़िंदगी में ऐसा ना हो सका। फिर इस मुलाकात से यह भी मतलब था कि इस किस्म की लतीफ धमकी से शायद ये भी मालूम हो जाएगा कि हजरत इलामा की राय इस बाब में क्या है, या ये कि अरबाब लीग किस फिक्र में है। दौलताना से हजरत इलामा का ज़हन यूनियनिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी से देवबंद की तरफ मुंतकिल हो गया। मुसलमानों की रहनमाई ना अरबाब सियासत कर रहे हैं ना अरबाब मजहब, ये क्या बात है। शायद यही एहसास था जिसके मतहत फरमाया, क्यों ना मौलवी हुसैन अहमद और इनके तरफदारों से कह दिया जाए कि हम कौमियत के मसले पर गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, लेकिन मदार बहस कुरान सुन्नत होगा। फिर फरमाया, यूसुफ सलीम चिश्ती कहाँ है, उन्होंने तरीक़ वहाबियत पर मजमून क्यों नहीं लिखा। सफ़ा नंबर 229, अगर लिखे तो मुझे दिखा दें। जैसा कि रकम हरूफ इससे पहले लिख चुका है कि हजरत अलामा तरीक अहल हदीस और तरीक वहाबियत में फ़र्क करते थे। उलमाए अहल हदीस की खिदमत के वो दिल से कायल थे और इनका जिक्र हमेशा दिली एहतराम से करते थे। वहाबियत इनके नज़दीक वो गलत फ़िरकाबंदी थी जिसका मुतशद्दिदाना अकायद और तंग नजरी ने सियासत में एक नहायत गलत रवश अख्तियार कर रखी थी। फिर इस रवश की एक तारीख भी है, लिहाजा यूसुफ सलीम चिश्ती जब एक बार हजरत अलामा की खिदमत में हाजिर हुए और बाद सियासी और मजहबी ख्याल के पेश नज़र इस तहरीक पर गुफ्तगू करने लगे तो हजरत इलामा ने फरमाया, क्या अच्छा हो जो आप इस मौजू पर एक मजमून लिख दें। लेकिन चिश्ती साहब मालूम ही कहाँ गायब हो गए हैं, ना हजरत इलामा की खिदमत में हाजिर हुए ना मजमून लिखा। सेहत मिजाज और दवाओं के सिलसिला में तबी मरकूबात का जिक्र आ गया, खमीरा गौजबान और दवा अलमसक की तरीफें होने लगी। इतफाकन इसी वक्त अली बख दवा अलमसक की एक खुराक चमचे में ले आया, हजरत इलामा ने बड़े मज़े से लेकर दवा खाई और कहने लगे, बड़ा अफसोस है हकीम साहब ने इसकी मकदार इतनी कम रखी है, ना चार ना छः नुकता दो माशे। फिर फरमाया, कश्ती साहब आज शाम ज़रा जल्दी तशरीफ ले आएँ, कुछ वक्त निकाल लें और ताकि दवाओं और इनके इस्तेमाल का एक नक्शा तैयार हो जाए। चंद मिनट खामोशी रही, हजरत इलामा ने हुक्के के दो एक कश लिए, अली बख्श चाय ले आया, हजरत इलामा ने चाय पी, कुछ आराम फरमाया। फिर अरशाद हुआ, मिस्टर ह्योम आए थे, कहने लगे कि किसी सूफी बुजुर्ग का पता दीजिए। मैंने कहा, ये तो ज़रा मुश्किल सी बात है, हमारी उम्र गुजर गई, कोई मर्द कामल ना मिला। सफ़ा नंबर 230, मिस्टर ह्योम शायद इस ज़माने में हुकूमत पंजाब के सेक्रेटरी। फरमाया, मिस्टर ह्योम कहते हैं कि प्रोफेसर मिस्से नून ने खुद इनसे कहा था कि अगर वो हलाज की तहरीरें ना पढ़ते तो धरिया हो जाते। मैंने हंसते हुए कहा, हमारा भी शायद यही हाल होता, लेकिन हमारी दस्तगीरी रूमी ने की। आप गजाली पढ़ रहे हैं, आप हिंदू बात गजाली से हासिल कर लीजिए। यूं भी के मिस्टर ह्योम हसाई थे और हमें मालूम है कि मसीह इल्मुल कलाम, लिहाजा यूरोप के मजहबी दिल व दिमाग पर गजाली का असर नहायत गहरा है। हजरत अलामा ये कहकर खामोश हो गए, मालूम होता है था कि इनका ज़हन किसी गहरे फिक्र में डूब गया है। फिर जब चंद मिनट के बाद या अल्लाह कहते हुए ज़रा सीधे होकर बैठ कर रुके के दो एक कश लिए तो मैंने इस ख्याल से कि मुझे कुछ कहना चाहिए अर्ज किया, कोई शेर तो नहीं हुआ। फरमाया, नहीं। शहीद गंज का जिक्र आ गया, अरशाद हुआ, मुराकबे के हामी टाल मटोल कर रहे हैं, इनकी मर्जी है मुसलमान खामोश रहे, लेकिन इसकी बजाय कि इस खामोशी की कोई कीमत अदा करें, उल्टा उनसे चंदा वसूल कर रहे हैं। ये चंदा नहीं है, जुर्माना है। अजीब बात है, मुसलमान नुकसान उठाएं और जुर्माना भी अदा करें। फिर बड़े दुख भरे लहजे में फरमाया, मुसलमान भी क्या सादा लौह हैं और इन्हीं हमदर्द भी मिले हैं तो कैसे बेदर्द कैसे शातर। हजरत अलामा बड़े रंजीदा खातर थे। कदर सकूत के बाद फिर फरमाया, तजब है इन लोगों की मुनाफ़त पर। और फिर बाज का नाम लेकर कहने लगे, इनकी मुनाफ़त में खलूस भी है, कैसे खलूस मुखलस मुनाफ़क हैं ये लोग। सफ़ा नंबर 231, जुमा मुबारक 11 फरवरी, आज ईद थी, ईद अल अज़हा, नमाज ईद से वापस आया तो मैंने अजीज़ी नसीर से कहा कि हजरत अलामा की खिदमत में हो आए, ये फरीदा अभी अदा हो जाना चाहिए। सैयद नसीर अहमद मेरा भाई, सलामत भी साथ थे। जुवेद मंजिल पहुंचे और सीने में दाखिल हुए थे। अव्वल अली बख्श को ईद की मुबारक दी, मुसाफा किया, बगल गिरी हुई, फिर हजरत अलामा का हाल पूछा। अली बख्श ने कहा, अल्लाह का फजल है, अच्छे हैं, मलक बरकत अली, गुलाम रसूल खान और अजीम शेख अजीमुल्लाह से बातें हो रही हैं, ईद मुबारकबाद देने आए थे। मरहूम वकील और मशहूर कानूनदान, पंजाब में लीग जिंदा रही तो इन्हीं के दम से। वो तन तनहा पंजाब लिजिस्लेटिव असम्बली में बरसों लीग की नुमाइंदगी करते रहे। बड़े मुखलस और दयानतदार कारकुन थे। अफसोस है इनका इंतकाल तकसीम मुल्क से पहले ही हो गया 1946 में। मरहूम बैरिस्टर एट लार्ज यूनियन पार्टी की मुखालफत में पेश पेश थे। मलक साहब मरहूम के रफीकार और हजरत अलामा के दरीना नियाजमान। इनकी सेहत तकसीम मुल्क से पहले ही खराब हो चुकी थी। तकसीम मुल्क के कुछ दिनों बाद इंतकाल फरमाया। मरहूम वकील अंजुमन हमायत इस्लाम के सेक्रेटरी और दरीना कारकुन, चंद वर्ष हुए इंतकाल हो गया। सलामत ने कहा, हम भी इसी गरज से आए हैं, अगर गुफ्तगू निजी नहीं तो हजरत अलामा की खिदमत में हाजिर हो जाए। सफा नंबर 232। अली बख्श ने कहा, शौक से लीग ही की बातें हो रही हैं। हम लोग कमरे में दाखिल हुए तो हजरत अलामा को शाश बिशाश पाया, ईद की मुबारकबाद दी, सेहत का पूछा, हजबे ममूल फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। मलक साहब और खान साहब ने से दरीना नियाज हासिल था, इनसे भी मुबारकबाद अर्ज की गई और वो भी बड़े तपात से पेश आए। यूँ सिलसिला गुफ्तगू चंद मिनट के लिए मुनक़ता हो गया, लेकिन फिर जब हम खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गए तो हजरत अलामा ने खान साहब को मुखातब करते हुए फरमाया, आपका यह ख्याल गलत है कि यूनियन पार्टी लीग के इजमा पर इसलिए मुसर है कि जना कानून शिकनी की मुखालफत करेंगे। लीग की अक्सरियत इनका साथ देगी, लिहाजा मुसलमान लीग से बर्जन हो जाएंगे और कामयाबी यूनियन पार्टी को होगी। मेरी राय इसके खिलाफ है, आप लीग का इजमा होने दीजिए। कानून शिकनी तो क्या, गवर्नर की वापसी बल्कि बाद गुजरा के इस्तीफे और बदतरफी तक का मुतालबा किया जा सकता है। नए आइन के मुताहत हर शख्स को हक हासिल है कि दो आने देकर लीग का रुकन बन जाए। बालफाजी दीगर हर शख्स दो आने में हक़ राय नुमाइंदगी खरीद सकता है, क्यों ना लीग की रुकनीत का दायरा वसी करें। मेरे ख्याल में तो दो आने की क्या, दो लोग दो रुपए भी बाखुशी अदा करेंगे। यूनियनिस्ट पार्टी अव्वल तो चाहती नहीं कि लीग का इजलास लाहौर में हो। अच्छा, हजरत अलामा से भी कह दिया गया था कि अगर यहाँ लीग का इजलास हुआ तो फसाद का खतरा है, लिहाजा वो कैद आजम को मुतनबा कर दें। फिर राय हुई कि क्या मुजायका है लाहौर ही में इजलास होने दिया जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि ज़रूर हो। मुसलमान बड़ा फरोख्ता है, शहीद गंज के मामले में कानून शिकनी की तहरीक की गई तो कैद आजम ने इसकी मुखालफत करेंगे और ये गोया यूनियनिस्ट पार्टी की जीत होगी। लिहाजा खान साहब का सफ़ा नंबर 233 ख्याल था कि अंदरी सूरत मसहलत यही है कि लीग का इजलास लाहौर में ना हो। गवर्नर इसलिए कि सबसे बढ़कर इसी ने सिखों को मस्जिद के इंहदाम पर उकसाया और अरबाब इकतदार को मजबूर किया कि इस मामले में इसका साथ दें। फिर कानून का इस्तेमाल भी बड़ी बेदर्दी से किया। चुनाचा आवाम ने इसके लिए एक सिखी नाम भी तजवीज़ कर दिया था, इसे अमर सिंह की बजाय अमर सिंह कहते थे, यानी कबीना पंजाब के इन दो मुसलमान मुजरा का, जिनके बारे में शुबा था कि उन्होंने मस्जिद के इंहदाम की तजवीज में गवर्नर का साथ दिया। खान साहब की इस बात पर मलक साहब ने वजारत पंजाब के मतलब बड़ी दिलचस्प बातें छेड़ दी। कहने लगे, जब वजीर आजम बीमार थे तो बाद अरकान मजलिस बराबर इस कोशिश में लगे रहे कि इनका एक नायब यानी नायब वजीर आजम भी होना चाहिए। मतलब ये था कि अगर इस तरह कोई नायब वजीर आजम हो गया तो शायद वजीर आजम से आगे बढ़ने में कामयाब हो जाए। मलक साहब ने यह भी कहा कि नवाब ममोट अपनी जमात मजबूत कर रहे हैं और सर सिकंदर खैर खुआओं ने भी इन्हें इसकी इतला भी कर दी है। शाहनवाज खान महरूम, हजरत अलामा ने फरमाया, सुना है आज मस्जिद में सिर्फ 2 रुपये चंदा वसूल हुआ, और फिर मुस्कुरा कर कहने लगे, मलक साहब देखिएगा आप भी कहीं वजारत के चक्कर में ना आ जाइएगा, 2 या इससे कुछ ज़्यादा ठीक रकम याद नहीं रही। मतलब था बराए नाम, इसलिए कि मुसलमान प्री काउंसिल में अपील करने के हक में नहीं थे। इनका ख्याल था कि हाई कोर्ट की तरह प्री काउंसिल से भी इंसाफ की तवक्को रखना बेसूद है, और इसकी वजह यह है कि मस्जिद शहीदगंज का इन्हदाम दरअसल एक सियासी मामला है, ना कि कानूनी। सफ़ा नंबर 234। मस्जिद यानी शाही मस्जिद जामिया आलमगिरी, जिसे एक तरह से सरकारी मस्जिद की हैसियत हासिल थी, यही मस्जिद थी जिसकी तरफ इशारा करते हुए हजरत अलामा ने फरमाया था, बिया कातार ए उम्मत बसालियम कमारे जिंदगी मर्दाना बाइजियम चना नालियम अंदर मस्जिद शहर के दिल दर सीना मला गुजारियम अरमगाने इजहाज। मलक साहब को हंसी आगे, कहने लगे मैं और वजारत ये कैसे हो सकता है। हजरत अलामा ने कहा, मलक साहब मैं ममोट के खिलाफ नहीं, मुझे सिर्फ इनकी तजवीज से इख्तलाफ है। नंबर एक, प्री काउंसिल में अपील की जाए। फिर फरमाया, थोड़े से खलूस, दयानत और मेहनत की ज़रूरत है। अगर ऐसा हुआ तो अजीब नहीं कि 5-6 बरस में कोई शख्स पैदा हो जाए और समझे कि पंजाब का असल मसला क्या है। ऐसा शख्स नुकसान में नहीं रहेगा, इसे क़यादत भी मिलेगी और वजारत भी। वजारत पंजाब का बहरहाल मुस्ताफी हो जाना चाहिए, असूलन भी, और इसलिए भी कि असम्बली में कोई शख्स काम का नहीं है। अरशाद हुआ, नवाब साहब अपने रुफका समेत लीग में शामिल का शमूलियत का ऐलान क्यों नहीं कर देते? इन्हें ऐसा करना चाहिए। यूनियनिस्ट पार्टी से कामलन कतअ तल्लक करते हुए ये बातें हो रही थी कि शायद शाहिद खान साहब ने कहा, अब तो बाद हिंदू भी इस अमर की तहरीक कर रहे हैं कि किस्मत अम्बाला को पंजाब से अलग कर दिया जाए। इनका ख्याल है कि अम्बाला दिल्ली अजमेर और मारू उड़ाक को मिलाकर एक नया सूबा कायम कर देना चाहिए। सफा नंबर 235। हजरत अलामा ने फरमाया, ये तजवीज़ बड़ी मुबारक है, मुसलमानों को फौरन इसका खैर मुकदम करना चाहिए। जैसा कि हजरत अलामा खुतबा अलाहाबाद में तजवीज़ फरमा चुके थे, फिर जरा मुस्कुराते हुए फरमाया, यूनियनिस्ट पार्टी के हिंदू अरकान अगर कुछ भी अकल रखते तो इन्हीं चाहिए इस तजवीज़ को बिला तामल कबूल कर लें। इस तरह सब छोटू राम बआसानी वज़ीरे आज़म बन जाएंगे। वतन ज़िला रोहतक, पंजाब के हिंदू जटों के नुमाइंदा वार यूनियनिस्ट पार्टी के सरगर्म कारकुन थे। इनके मतलब लुत्फ की बात यह है कि अपनी तकरीरों में बकसरत हजरत अलामा के अशार का हवाला देते। उन्होंने सियासत में कदम रखा और फिर हिंदू जटों की नुमाइंदगी के सहारे चंद ही दिनों में कलमदान वजारत हाथ में ले लिया। बाबा उर्दू ने पहली मरतबा इनका नाम सुना तो कहका लगाते हुए कहते, छोटू छोटू भी क्या नाम है। चंद मिनट और नशिस्त रही, पहले शेख साहब ने इजाज़त ली, फिर मलक साहब और खान साहब ने सलामत का ख्याल था कि अब मौका है, हमें अपने मामलात के बारे में बुत कर लेनी चाहिए। लेकिन मैंने रोक दिया, जी नहीं चाहता कि हजरत अलामा को अपनी ज़ाती मुश्किलात के जिक्र से परेशान किया जाए। अली बख्श आ गया, हजरत अलामा के खाने का वक्त हो गया था, यूँ भी दोपहर कब की हो चुकी थी, हमने इजाज़त ली। सफ़ा नंबर 236। शंबा 12 फरवरी, शाम के करीब हाजिर हुआ, देर तक नशिस्त रही। चौधरी साहब और राजा साहब जल्द ही आ गए। कशी साहब अलबत्ता ज़रा देर से आए, नबज देखी, खरीदे मजाज पूछा और हसब मबूल दो और दवा और गजा का दरियाफ्त किया। मीम शिम भी आ गए। अली बख्श हजरत अलामा के पाँव और पिंडलियाँ दबा रहा था। रमा रहमा चिलम ले आया, चाय का एहतमाम हुआ। कशी साहब ने कहा, दवाओं का नक्शा तैयार है, मुझे इतला हो गई थी, मैं खुद भी इसी फिक्र में था। मुसलमानों की नफासत मिजाज का जिक्र होने लगा, उन्होंने दवाएं भी तैयार की तो कैसी खुश रंग, खुश जायका और खुशबू। अरशाद हुआ, कशी साहब माशाल्लाह समझदार हैं, क्यों ना वो एक तबी अदारा कायम करें, यूँ इनकी शोहरत पंजाब और बैरून पंजाब में फैल जाएगी। मुमकिन है ये अमर तिब की तरक्की का बायस हो। कशी साहब ने खामोशी से हजरत अलामा के अरशाद को सुना। मीम शीम ने इनकी तइद की, फरमाया, तिब कदीम हो या जदीद, इसकी तरक्की का इन्हिसार नवाबिक पर है। आम दस्तूर यह है कि हर मालिक अमराज के चंद नुस्खे और तदबीर याद रखता है और फिर जैसे जैसे ज़रूरत पेश आती है इलाज व मुआवजे में इससे काम लेता है। अगर इस एतबार से भी चंद अच्छे तबीब पैदा हो जाएँ तो और समझ से काम लें तो गनीमत है। यूँ भी तिब को फ़रोग होगा, वो असल ज़रूरत इज्तहाद फ़िक्र की है, ज़ाकत और तबाही की। शहीद गंज का जिक्र आ गया। फिर लीग के इजलास लाहौर, यूनियनिस्ट पार्टी के दाव पेज, अपील और चंदे का और बिलासर इज्तमाई ईद का कि हजूम मोमिनीन तो था लेकिन शिकवा मलक व दीन से खाली। हजरत अलामा ने फरमाया, शिकवा मलक व दीन नामुमकिन नहीं लेकिन ज़रूरत। सफ़ा नंबर 237। क़यादत की है मुसलमानों को एक मरकज़ पर जमा करने और इस मदार सियासत पर लाने की जो इस्लाम ने कायम किया। ईद आज़ादा, शिकवा मलक व दीन, ईद महकूमा हजूमे मोमिनी, बस चह ब ईद कर्द। कल शेख अजीमुल्ला जब शेख गुलाबदीन मरहूम का जिक्र कर रहे थे तो मुझे ख्याल आया कि शेख साहब वालद माजद के कदीम अहबाब में से थे। बचपन में वालद माजद के साथ में दो एक बार इनके यहाँ हाजिर भी हुआ था, मैंने इनका जिक्र छेड़ दिया। वतन सियालकोट मौलाना मीर हसन के शिगिर्द। आगे जाकर शाह साहब का अरशाद भी इशारा भी मौलाना ही की तरफ है। हजरत अलामा ने फरमाया, शेख साहब महरूम ने वकालत की संत हासिल की तो शाह साहब ने इनसे कहा, आप लाहौर चले जाइए और वहीं वकालत कीजिए। सियालकोट का क्याम आपको रास नहीं आएगा, लाहौर में आपके लिए बहुत कुछ है। चुनचा वो लाहौर आए और फिर यहीं के होकर रह गए। वो बड़े दयानतदार, बड़े समझदार, सोच समझ कर खर्च करने वाले और जरस इंसान थे। शाह साहब की पेशन गोई हरूफ बहरूफ साबित सही साबित हुई। अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी बरकत दी और उन्होंने भी शाना शुबाना रोज़ मेहनत से बड़ी बहुत बड़ी जायदाद पैदा कर ली थी। मुझसे उम्र में बड़े थे लेकिन अक्सर मुलाकात के लिए आ जाते। इनकी वजहदारी काबिल दाद थी। चुनाचा पुरानी अनारकली में शेख गुलाबदीन फ्री हॉस्पिटल के नाम से अब भी इनकी एक यादगार कायम है। सफा नंबर 238, दोशंबा 14 फरवरी। वक्त अगरचा कम था लेकिन रेडियो स्टेशन जाते हुए हजरत अलामा की खिदमत में हाजिर हो गया। अभी शाम नहीं हुई थी। कमरे में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि एक साहब कुर्सी पर बैठे हैं। लिबास वही है जो अहले पंजाब के आम तौर पर पहनते हैं, यानी शलवार कमीज और छोटा कोट। लेकिन मैंने देखा कि हजरत अलामा किसी कदर परेशान खातर होकर इनसे कह रहे हैं, अच्छा मुतज्जन और बिरयानी का मुतालबा है। ये कहते कहते हजरत अलामा का चेहरा फिर मदन हो गया। मेरे लिए ये साहब बिल्कुल अजनबी थे, मैं नहीं समझता मामला क्या है। हजरत अलामा ने फिर फरमाया, अफसोस है हम इसके लिए तैयार नहीं। फिर थोड़ी देर तक खामोशी रही, वो साहब खामोश थे। फिर मैं भी चुपचाप बैठा था कि हजरत अलामा ने फिर मोहर सुकून तोड़ी और इनकी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगे कि आदमियों के लिए, कितने आदमियों के लिए। मैं हैरान था मामला क्या है, न्याजो नजर व न्याज का ख्याल है या सदके का, और ये साहब हैं कौन। गर्ज जो बात की एक ममा चंद मिनट और गुजरी हत्ता कि वो साहब चले गए। मालूम हुआ इनका नाम मिर्जा दीन मोहम्मद है, ज्यादा कुछ पता ना चला। हजरत अलामा बदस्तूर कबीदा खातर थे। मैंने मजाज पूछा तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर खामोश हो गए। मुझे इस सूरत हाल से खासी परेशानी थी कि हुसन इतफाक से ठीक इसी वक्त गुलाम रसूल खान तशरीफ ले आए, फिर प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती और फिर ख्वाजा अब्दुल वहीद। इस ज़माने में सेक्रेटरी इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मजल्ला इस्लाम के मुदीर अजाजी और अंजमन खुदामुद्दीन के रुकन रकीन आजकल कराची में मुकीम हैं। सफा नंबर 239, शहीदगंज का जिक्र छिड़ गया। वजारत पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी और अंजमन हमायत इस्लाम के मतलब सरसरी सी बातें होती रहीं। अलबत्ता एक मरतबा हजरत अलामा ने ख्वाजा साहब से मुस्तफर राना फरमाया, आपकी ये करारदाद के जिन लोगों ने मस्जिद गिराई है वही मुसलमानों के हमदर्द बनकर अपील के दर पे हैं, बहुत खूब है। मगर ख्वाजा साहब आप इन अशखाज या शख्स का नाम क्यों नहीं ले देते जिन्होंने या जिसने ऐसा किया, क्यों ना मुसलमान जान लें कि इनके ये हमदर्द और बेहिखवा कौन है। ये करारदाद शायद अंजमन खुदामुद्दीन ने मंजूर की थी। लोग इस कदर बरगश्ता खातर थे कि इस जमाने में यूनियनिस्ट पार्टी के बाद हद दर्जा जी असर और मुक्तदर हजरात का नाम ऐलानिया लिया जा रहा था। इन पर यह इल्ज़ाम था कि मस्जिद का इनहदाम इन्हीं की रजामंदी से हुआ, लेकिन ख्वाजा साहब खामोश रहे। उन्होंने हजरत अलामा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जैसे सबको मालूम है कि मस्जिद क्यों और किसके इमाम पर गिराई गई। फिर मुझसे फरमाया, कोई खबर है। मैंने अर्ज किया, खबर तो कोई नहीं है बजैद इसके कि कहीं ना कहीं बलवा हो जाता है। इस पर फरमाया, आज बाजे का सवार है कल कुर्बानी का झगड़ा। इन सब बातों का मतलब सवाए इसके और क्या है कि हिंदू और मुसलमानों में बनाए कौमीत कोई इतिहाद मुमकिन नहीं। इरशाद हुआ, हिंदू कौमीत का वजूद भी बरए नाम है। अगर आज हिंदुओं में महाराष्ट्र की अलहदगी का ख्याल पैदा हो रहा है तो वो आप लोग देखिएगा, कल इतिहाद बंगाल का मुकाबला होगा। चुनचा 1947 में इस किस्म की एक तजवीज़ भी बाद लोगों के जहन में थी ताकि बंगाल की तकसीम रुक जाए। सफा नंबर 240, मैंने अर्ज किया, आपका इरशाद क्या ये है कि अज़रूबे सियासत हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही की हैसियत एक कौम की है। फरमाया, बेशक हिंदू एक कौम नहीं है बल्कि कई एक कौमों का मजमूमा। इतिहाद हिंद का ख्याल बैरूनी हमलों से डर का पैदा करता है, जब तक ये डर बाकी है इतिहाद की कोशिश जारी रहेगी। लेकिन जिस तरह यूरोप का इतिहाद मिलाकर टूटा, हिंदुस्तान की तकसीम भी यकीनी है। अकबर की कोशिश थी कि हिंदुस्तान मुतहद हो जाए मगर इससे और ज़्यादा अफ्तराक पैदा हुआ। आलमगीर को भी इसी कोशिश में नाकामी हुई, एक कोशिश वतनी थी दूसरी सियासी। इसलिए कि हिंदू एक जाति तो है मगर वसी मानों में अंदरूनी तौर पर इनका इतिहाद कुछ ज़्यादा मुहक्म नहीं। ये मजहब और मुआशरत का इतिहाद है, सियासी और कौमी इतिहाद नहीं है, जैसा कि बाइस्तला सियासत आजकल समझा जाता है। अकबरिया इतिहाद जिस बिना पर कायम करना चाहता था और इसके लिए जो रवादारी ज़रूरी थी, इससे हिंदू सियासी तौर पर मजबूत हो रहे थे। वतनी इन मानों में कि अकबर ने इश्तराक वतन को एहसास इतिहाद ठहराया। इस एहसास का तकाजा था कि बेमुकाबला सियासत مذہب کو ثانوی حیثیت دی جائے، ہر کوئی اپنے عقیدے پر قائم رہے، اور ریاست اس بحث میں نہ الجھے کہ سب عقائد ایک ہیں یا کسی ایک عقیدے کو دوسرے پر ترجیح حاصل ہے، بلکہ ہو سکے تو لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ ایک مشترک عقیدہ اختیار کر لیں۔ اکبر کا خیال تھا کہ یہ مقصد شاید دین الہی کی وساطت سے پورا ہو جائے گا، گو آخر الامر اس نے خود ہی یہ خیال ترک کر دیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اکبر اس جغرافیائی قومیت کا پیش رو ہے۔ صفحہ نمبر 243، جس پر انگریزوں نے ہمیشہ زور دیا لیکن اکبر نہیں سمجھا، نہ انگریز کے اس اتحاد کے لیے جو اشتراک وطن پر مبنی ہے، جس وسعت اور رواداری کی ضرورت ہے، ہندوؤں کو اس سے کوئی بہرا نہیں ملا۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھے کہ مسلمان ایک ایسا قومی اور سخت جان عنصر ہے جو اپنا جداگانہ تشخص برحال قائم رکھے گا، لہذا ناممکن ہے ہندوؤں کی کوشش کے باوجود ان میں جذب ہو سکے۔ اکبر شاید خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان ہندو معاشرے کا جز بن جائے۔ عالمگیر کی کوشش سیاسی تھی، ان معنوں میں کہ اس نے اکبر کی طرح نہ تو اشتراک وطن کو بنائے اتحاد ٹھہرایا، نہ ہندوؤں سے مداحنت اختیار کی۔ وہ تیموری روایات، سیاست اور قانون کے بھی خلاف تھا، جن کا سلسلہ دراصل چنگیز خان کے یاسا آگین تک پہنچتا ہے۔ اس کا ایمان تھا کہ اگر مغلیہ ریاست کا استحکام اسلامی نظام سیاست کی بنا پر ہو گیا تو اسلامی قوت اس قدر مضبوط ہو جائے گی کہ اس ملک کا اتحاد قائم رہے گا اور اس کی تقسیم بھی مختلف ریاستوں میں نہیں ہونے پائے گی۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اسلامی معاشرے کے اخلاقی اور تہذیبی اثرات ہندوؤں کو اپنی طرف کھینچ لیں، حتیٰ کہ ریاست کا عدل و انصاف اور رواداری شاید انہی قبولیت اسلام پر بھی آمادہ کر دے۔ دکن کی فتح اور فتویٰ عالمگیری کی تدوین انہی کی کوششوں کی بنا پر عمل میں آئی۔ پھر یورپ کی تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس کی ابتدا لوتھر سے ہوئی۔ لوتھر کے ہاتھوں جب کلیسا کی سیاست ختم ہوئی تو اس سیاست کا بھی خاتمہ ہو گیا جس نے یورپ کو متحد کر رکھا تھا، لہذا قدرتی بات تھی کہ اقوام یورپ کو کسی نئی احساس سیاست کی جستجو ہوئی۔ اس جستجو نے ان کی توجہ وطن اور نسل کی طرف منتقل کر دی۔ آخر الامر زمین اور رنگ بنائے سیاست ٹھہری۔ یوں جغرافیائی قومیت اور وطنیت کا ظہور ہوا، قومیں اور ملک وجود میں آیا، اور مذہب ایک امر ثانوی رہ گیا۔ صفحہ نمبر 242، لیکن قوموں اور ملکوں کا وجود جب ہی قائم رہتا ہے جب ان کی طاقت غیر متوازن نہ ہونے پاتی، لہذا اقوام یورپ برابر اس کوشش میں لگی رہیں کہ جس طرح بھی بن پڑے ایک دوسرے کے درمیان توازن قائم رکھیں۔ بہمہ توازن قوت برقرار نہ رہا، اس کی وجہ تھی اقوام یورپ کی نسلی اور جغرافیائی عصبیتیں، ان کی حوث استعمار اور جول ارض جس میں انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی، لہذا ان کی باہمی آویزش ایک کے بعد دوسری لڑائی اور آخر عمر جنگ عظیم۔ جنگ کا خاتمہ ہوا تو دہریت نے سر اٹھایا۔ 1914 تا 1918 جسے نسلیت اور جغرافیائی وطنیت پہلے ہی سے ہوا دے رہی تھی، حضرت علامہ نے لوتھر کی تحریک اس کے سیاسی پہلو اور اہل مغرب کے اخلاق و معاشرت اور مذہبی زندگی میں جو انقلاب پیدا ہوا اس کا تجزیہ جس خوبی سے کیا ہے، اس کے لیے ملحظہ ہو ان کا عہد افری خطبہ صدارت لیگ کے اجلاس اعلیٰ آباد میں، نیز ان کے مکتوبات، متفرق تحریریں اور کلام۔ فرمایا، ہندوستان کو بھی ان مراحل سے گزرنا ہوگا۔ شام ہو چکی تھی، خواجہ صاحب نے صحت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، چار برس تو کسی نہ کسی نہ گزر گئے، اب پانچواں برس ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ نے یہ الفاظ کچھ اس طرح ادا کیے جیسے انہیں اپنی صحت سے مایوسی ہے۔ یوں محفل پر ایسی افسردگی سی چھا گئی۔ خواجہ صاحب نے کچھ کلمات دعا کے طور پر فرمائے اور اجازت لے کر چلے گئے۔ میں تھوڑی دیر اور بیٹھا، حضرت علامہ نے کہا، حکیم فقیر محمد مرحوم نے عرصہ ہوا مجھے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کے استعمال سے روک دیا تھا، لیکن میں نے صفحہ نمبر 243 اس وقت ان کی اس بت کا مطلق خیال نہ کیا۔ حضرت علامہ کے مرض کی ابتدا بھی سوئیوں میں دہی کے استعمال سے ہوئی۔ حکیم فقیر محمد چشتی محروم حضرت علامہ کے حباب میں سے تھے، اسرار خودی کا پہلا نسخہ انہی کے اہتمام سے شائع ہوا۔ حکیم صاحب مرحوم کو طب میں جو مہارت حاصل تھی، اس کے علاوہ خطاطی کے بھی ماہر تھے، طبیعت کے بڑے شگفتہ، بڑے بزلہ سخن، بڑے رضادار اور احباب نواز تھے۔ ان کی ذات بھی ایک انجمن تھی، وچھو والی میں مطلب کرتے، ہندوؤں میں بھی بڑے دل ہر دل عزیز تھے۔ میں اجازت لے کر باہر آیا تو علی بخش نے کہا، اللہ خیر کرے، ڈاکٹر صاحب اپنی بیماری کے متعلق اب ایسی ہی باتیں کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، علی بخش دعا کرو اللہ انہیں صحت دے۔ اور بڑی تشویش، اضطراب اور افسردگی کے عالم میں ریڈیو اسٹیشن چلا گیا۔ صفحہ نمبر 243 244 सहशंबा 15 फरवरी। हजरत इलामा फरमाते हैं, मिर्ज़ा 3 मुहम्मद के दिमाग में फतूर थे। ये शख्स समझता है कि इसका तल्लक अरवा से है। मैंने अर्ज किया, अब मैं समझा कल आप इनकी बातों से क्यों अजुदा खातर हो रहे थे। आज भी मैं चाश से पहले ही हजरत अलामा की खिदमत में हाजिर हो गया था। कई बातें मशवरा तलब थी। हजरत अलामा का मजाज बफजला ताला नहायत शगुफ्ता है। मिर्ज़ा 3 मुहम्मद के बारे में हंस हंस कर गुफ्तगु करते रहे। यही दिमाग का फतूर, अरवाह से तल्लक, जन्नात की तस्खीर, न्याजो नजर व न्याज, गर्ज के जुमला खराफात जो इस सिलसिला में अक्सर सुनने में आती हैं। फिर ज़रा दम लेकर हुक्के का कश लिया और तकिए के सहारे कमर टेक ली तो मैंने ज़ाती मामलात का जिक्र छेड़ दिया। फरमाया, तुलुए इस्लाम का क्या हुआ? मैंने अर्ज किया, शायद दिल्ली ही से शाया हो, यानी वो मुजल्दा जिसका इजरार राकम अल हरूफ ने 1935 में दिल्ली से किया और जो 1936 में लाहौर मुंतकिल हुआ मगर जिसकी इशात जारी ना रह सकी। अहबाब दिल्ली की कोशिश थी कि इस मुजल्ले का मुकर्रर अजरा हो। उन्होंने एक मजलस सी कायम की और हकीम अहमद शुजा साहब को लिखा कि इस सिलसिला में मुझसे गुफ्तगु फरमाएं। मैं हकीम साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। मुतद नशिस्तें हैं, बिलाकर सिलसिला गुफ्तगु टूट गया। बनाए इख्तलाफ असूली थी। मजलस की राय थी कि पंजाब के अरबाब इकतदार यानी यूनियनिस्ट पार्टी के खिलाफ कुछ ना लिखा जाए, अगर मजबूरन लिखना भी पड़े तो बातियात और हर तरह की मसहलत का लिहाज रखते हुए और ख़त्म नबूवत का तो जिक्र तक ना आए। हालांकि ये इस वक्त का ख़ास और अहम बड़ा मसला था, ना कायद आज़म की हमायत की जाए। सफ़ा नंबर 245। चुनौचा 1935 में जब इसका पहला पर्चा दिल्ली से शाया हुआ तो इसके 2 मजामीन लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड और ख़त्म नबूवत के बारे में कहीं अशारतन यानी ज़ाती गुफ्तगुओं में और कहीं सरातन मसलन रोज़नामा इंकलाब में राकुल हरूफ को मशवरा दिया गया कि नजर बर हालात इन मसाइल को छेड़ना खिलाफ मसहलत है। गोया दिल्ली से लाहौर आकर मुझ पर यह हकीकत मुनकशफ हुई कि जुबान से लोग कुछ भी कहें अमलन अरबाब इख्तियार के साथ हैं। फजा ना साजगार थी। मैंने तुलू इस्लाम बंद कर दिया। हजरत अलामा को भी अफसोस था। इस दौरान में परवेज साहब भी आजादाना तुलू इस्लाम ही के नाम से इस मुजल्ले की इशात का अहतमाम कर रहे थे जो हजरत अलामा की वफात के बाद दिल्ली से शाया हुआ। लेकिन यह तुलू इस्लाम का दौर जदीद नहीं था बल्कि एक नया तुलू इस्लाम जो दिल्ली से कराची और कराची से बिलाकर लाहौर मुंतकिल हो गया था और अब तक शाया हो रहा है। कदर खामोशी रही। हजरत अलामा चाहते थे कि तुलू इस्लाम लाहौर से शाया हो मगर ये देखते हुए कि ऐसा कोई अमकान नहीं इस सिलसिला में कोई सवाल नहीं किया लिहाजा गुफ्तगु का रंग बदल गया। हजरत अलामा ने अजीजी मुनीर के तकर्रर पर मुकर्रर इजहार मुसरत फरमाया और मुस्तकबिल के बारे में मजीद तसल्ली दिलाई। मैंने सेहत का पूछा तो अरशाद हुआ, दुआ अल मसक का इस्तेमाल शुरू है। नींद अलबत्ता बहुत कम आती है, जो शानदा पीता हूँ तो बड़ा फायदा होता है, दमा रुक जाता है गुल गौ जुबान के जुशांदे से। अरशाद हुआ, जना ने मिर्ज़ा महमूद अहमद का खत मुझे भेज दिया है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हमारी जमात में रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है, अगर आपने हमें लीग में सफ़ा नंबर 246 शामिल ना किया तो मजबूरन कांग्रेस में शमूलियत करना पड़ेगी। जो इस ज़माने में बड़ी सरगर्मी से ये कोशिश कर रहे थे कि मजहबी और सियासी दोनों पहलुओं से अपनी जमात की अलग थलग हसीयत बनवा लें। मैंने अर्ज़ किया, आपकी क्या राय है? फरमाया, राय का क्या सवाल है, लीग में शामिल हों या कांग्रेस में, हम इनकी शमूलियत को कोई अहमियत नहीं देते, जो जी चाहे करें। दरियावत अमर ये है कि मिर्ज़ा साहब के नज़दीक हम मुसलमान हैं या नहीं? अगर हैं तो इन्हें भी इस्लाम का दावा है तो फिर लीग या कांग्रेस में शिरकत और अदम शिरकत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्हें बहरहाल लीग में शामिल होना चाहिए, लेकिन मिर्ज़ा साहब तो लीग और कांग्रेस से सौदा करना चाहते हैं और ये इस अमर का सबूत है कि या तो बहसीयत एक जमात वो मुसलमानों से अलग रहना चाहते हैं या हमें मुसलमान नहीं समझते। मैंने बहरहाल जिन्ना को लिख दिया है कि इस किस्म के खतों का कोई जवाब ना दे। मैंने कहा, लाहौरी जमात के बारे में क्या राय है? ये जमात तो हमारी तकफीर नहीं करती। फरमाया, ये ठीक है, लेकिन मुसलमानों के नज़दीक इसका जुर्म यह है कि वो इन लोगों को मुसलमान बल्कि बेहतर मुसलमान समझती है जो मुसलमानों की तकफीर कर रहे हैं। लाहौरी जमात का एक तरफ तो ये कहना है कि इसे बहस है तो मिर्ज़ा साहब के दावे अमामत मदूमियत और मसीहियत से वो कादियानी तसव्वुर नबूवत को सही तस्लीम नहीं करती, लेकिन इसे शिकायत थी कि अगर कादियानी जमात गैर तशरी नबूवत की कायल है और गलती से इस पर मसर तो मुसलमान इसे काफर क्यों ठहराते हैं? इस्लाम अहल किबला की तकफीर की इजाज़त नहीं देता बल्कि अहल किबला का मुकफ्फर खुद कुफर का मर्तकब हो जाता है। दूसरी जानब वो कादियानी जमात को के अहले किबला की तकफीर कर रही थी मुसलमान ही समझती थी, बल्कि ज्यादा बेहतर मुसलमान। सफा नंबर 247। इसलिए कि कतई नजर इस गल्लों के जो कादियानी जमात को मिर्जा साहब के दावों में था, लाहौर जमात को इससे इख्तलाफ था, तो ये मिर्जा साहब अमाम वक्त तो हैं। देखिए रिसाला ज़रूरतुल ईमान, लेकिन इमाम वक्त के इनकार से इस्लाम का इनकार लाजम नहीं आता, वो ईमान में कमी रह जाती है। लिहाजा कादियानी अहल किबला है, मुसलमान इनकी तकफीर ना करें, लेकिन कादियानी जमात मुसलमानों की तकफीर करती है और इसके बावजूद लाहौर जमात इसे मुसलमान समझती है। शहीद गंज की बातें होने लगी 1935 का हंगामा और अब मुसलमानों की खामोशी, बिलखसूस मौलाना जफर अली खां की हर कहीं गो मगो किसी हालत। हिंदुओं और सिखों का एहसास तफूक पर प्री काउंसिल में अपील कर रहा हूँ कि यूनिस्ट पार्टी के हथकंडे, मैंने अर्ज किया अगर मुसलमान कानून शिकनी पर आमादा हो जाएं और हमारे अरबाब सियासत कैदो बांध की सख्तियाँ द्वारा कर लें, तो क्या इससे हिंदुओं और अंग्रेजों दोनों की आंखें नहीं खुल जाएंगी? फरमाया क्यों नहीं, मेरी राय में कानून शिकनी ही वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कानून शिकनी के नतज कौम के लिए नहायत अच्छे होंगे। लीग को भी अपनी कमजोरी का एहसास है, लेकिन मैं तो जनाब को भी यही मशवरा दूंगा कि कानून शिकनी की तहरीक ही हमारे पास और बिजली का वाहिद इलाज है, बल्कि मेरी सेहत ने इजाजत दी तो मैं खुद भी इसमें शिरकत करूंगा। कानून शिकनी से तरीके खिलाफत और तरीके खिलाफत की नाकामी से मुसलमानों में जो इंतशार फैला, इस पर इजहार अफसोस होने लगा। इस तरह की नाकामी का एक बहुत बड़ा सबब तो यह था कि इसकी जमा क़यादत गांधी जी के हाथ में थी और कामयाबी का दारोमदार एक ऐसे इतिहाद पर जो कायम नहीं रह सकता था, बल्कि इसकी कामयाबी में फराकीन की अपनी अपनी जगह कुछ खतरात भी थे। सफा नंबर 248। भाई हमारे इससे ये तो साबित हो गया कि मुसलमानों में इशार कुर्बानी का गैर मामूली जज्बा और कुव्वत अमल मौजूद है, जिसे इसका वजूद ख़त्म हो गया। हालांकि सूरत ये होती है कि बासबाब इंदवाल व इहतात इसके कुआए इल्मो अमल मुर्दा हो जाते हैं। कुरान पाक ने इस हालत को भी मौत से तबीर किया है, जिसमें इनके मखसूस मजहबी तसवरात सीता ग्रह और असमा काम कर रहे थे। लिहाजा ख्याल ये था कि इस तरीक की रूह गैर इस्लामी है। चुनचा 1920-21 में ये मसला अक्सर गैर बहस रहा कि गांधी जी की नान को ऑपरेशन को क्या फिर वाकया वही हैसियत दी जा सकती है जो इस्लामी शरीयत में तुर्क ममालात को है। हालांकि इस लिहाज से यह तहरीक बिलाशुबा तुर्क ममालात के इस तस्वर पर मबनी थी, जो इस रूबे सूरा मुफ्तखना कायम होता है और जिसे जमीयत उलमाए हिंद ने मौलाना अब्दुल कलाम की रहनमाई में इख्तियार किया। सूरा मुफ्तखना की तलीम यह है कि अगर कोई कौम मुसलमान के दुश्मन है, तो इस ममालात की इस तबीर से किसी मुसलमान ने इनकार नहीं किया ना कर सका। चुनाचा 1920 में जब रहनुमायान खिलाफत का एक वफद जिसमें मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम भी शामिल थे, लाहौर आया और इसने मुतालबा किया कि अरबाब इस्लामिया कॉलेज हुकूमत से तुर्क ममालात का ऐलान कर दें। तो कॉलेज कमेटी का एक जलसा तलब किया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली ने अरबाब अंजमन से खिताब करते हुए तुर्क ममालात की तजवीज़ पेश की और मौलाना अब्दुल कलाम ने इनकी तायीद में सूरत मुफ्तखना की आयात हवाला दिया। इस पर सर अब्दुल कादर ने मौलवी नज़ीर अहमद के तर्जमा कुरान के हवाले से सूरह मुफ्तखना की इस तबीर से इस बिना पर इख्तलाफ किया कि कुरान मजीद ने ईसाइयों को मुसलमानों का दोस्त कहा है और अंग्रेज ईसाई हैं। मौलाना अब्दुल कलाम ने यह सुना तो उठ खड़े हुए और जोश में आकर कहने लगे, शेख साहब कुरान मजीद की अरशादात का तो बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, हम कुरान मजीद के पाबंद हैं, मौलवी नज़ीर अहमद का तर्जमा या हवाशी हमारे लिए हुज्जत नहीं है।